अब आप देखिए कि कुरान पाक की बाज आयतें ऐसी हैं जिनका कुछ जवाब होता है ना। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर नमाज के दौरान कोई ऐसी आयत आ जाए जिसका जवाब मसनून है और हदीस से मिलता है तो उस पर क्या किया जाए। तो मुख्तलिफ आयात का जवाब, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि इमाम जब बाज मखसूस आयात की तिलावत करते हैं तो वो और बाज मुक्तदी नमाज में बाआवाज़ बुलंद इसका जवाब देते हैं। ये अमल सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई सही सरीह रिवायत नहीं है। हाँ, बाज़ आयात की तिलावत के बाद इमाम या मुनफरिद कारी अपने तौर पर इनका जवाब दे तो जायज़ है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद की कैफियत बयान करते हैं कि जब आप तस्बीह वाली आयात पढ़ते तो तस्बीह करते, जब सवाल वाली आयात तिलावत करते तो सवाल करते, और जब तावुज़ वाली आयत पढ़ते यानी जिसमें पनाह मांगनी होती तो अल्लाह ताला की पनाह पकड़ते थे। और ये रिवायत सही मुस्लिम में 772 है। खुलासा क्या बना कि आयतों का जो जवाब देना है वो नमाज के दौरान नहीं देंगे, अलग से कोई पढ़े तो दे देंगे, लेकिन नमाज में अगर इमाम साहब, जैसे अमूमन देखिए आगे आई रही है हदीस उसको सुन लें, सब्बी हिस्मा रब्बी का लाला, पढ़ने वाले का इसके बाद जवाबन सुबहान रब्बी या लाला कहना साहबे कराम से साबित है। ये रिवायत नोट करेंगे मुसनफ इब्ने अबी शैबा की जिल्द 2 548 और 549, और सही रिवायत है। यानी अब ये रिवायत के सहाबे कराम ये पढ़ने वाले का जवाब देते थे, इसी तरह सूरत गाशिया के अहतमाम पे वो है ना, इन्ना अलैना हिसाबहुम व इन्ना अलैना इयाबहुम, तो बाज़ लोग इसके बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये साबित नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों को जहन में रख लीजिए। आम तौर पे इन आयतों की तिलावत की जाती है लेकिन नमाज के दौरान इमाम साहब अगर सभी इसमें रब्बी का लाला पढ़ेंगे ना तो मुक्तदी जवाब नहीं देंगे। और मैंने इस चीज़ को पर्सनली भी ऑब्जर्व किया, हम कराची में ईद की नमाज बाहर पढ़ते थे जैसा कि हुक्म है खुली जगहों में, इमाम साहब दूसरे किसी शहर से आते थे, बहुत अच्छा खुतबा होता था उनका, जब वो सभी इसमें रब्बी का लाला कहते तो मुक्तदी सारे सुबहान रब्बी या लाला कहते। उन्होंने पहले एक आध साल में ऐसे नहीं हुआ कि उसको चेंज किया, लेकिन उसके बाद जिस दिन उन्होंने पढ़ाई तो उन्होंने इस पे वो रुके ही ना, सब भी हिस्मा रब्बी कल आला लजी खलक फसवा, जब रुके ही नहीं तो फिर जवाब कहाँ से आएगा, अलग से पढ़ना साबित है लेकिन नमाज में नहीं पढ़ना चाहिए, वल्लाहु आलम। ठीक है, तो गोया कि फिर ये बात साबित हो गई। अब आगे चलते हैं जो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब होगा कि नमाज में वसवसे आते हैं क्या करें, है आपका ये इशू बहुत सारों का होगा, तो आइए देखते हैं शैतानी वसवसों से बचने के लिए क्या करें। उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे और मेरी नमाज और किरत के दरमियान हायल हो जाता है, मेरी नमाज और किरत के दरमियान हायल हो जाता है, तो किरत में इल्तबास पैदा करता है। इल्तबास किसको कहते हैं, लबी से या अलबिसु से खलत मलत हो जाना, यानी शक होता है कि कितनी पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, आगे क्या था, जैसे हाफिजों को गलती लगती है, वो है इल्तबास। आपने फरमाया इस शैतान का नाम खिंजब है, जब तुम इसे महसूस करो तो अल्लाह से पनाह मांगो, यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और बाएं जानिब 3 बार थुथकारो, थुत इस तरह करके। हज़रत उस्मान बिन आस कहते हैं कि जब मैंने ऐसा किया तो अल्लाह ने मुझे शैतान से निजात दी और इसे दूर कर दिया। ये रिवायत सही मुस्लिम की 2203 है। तो क्या पता चला, ड्यूरिंग द सलात लेफ्ट साइड पे हल्का सा ऐसे थुत करे, तसव्वुर में लाइए कि मैं शैतान को भगा रही हूँ, और साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ लीजिए तो फिर शैतान आपको तंग नहीं करेगा। और ज़्यादा तवज्जो दीजिए नमाज पे, तर्जमे पे गौर करें, सूरतें बदल के पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी तवज्जो उसमें ज़्यादा होगी। दौरान नमाज में कोई सोच आने पर नमाज बातिल नहीं होती। उकबा बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज असर पढ़ी, नमाज के बाद आप फ़ौरन खड़े हो गए और लोगों की गर्दनें फैलांगते हुए अजवाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए, लोग परेशान हो गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। आप ज़रा सिनेरियो देखिए कि नबी सल्लम नमाज असर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फ़ौरन खड़े हुए और लोगों से हटते हुए अपने अजवाज में से किसी के हुजरे में गए, लोगों को लगा कि ये क्यों गए। आप वापस तशरीफ लाए तो सहाबे कराम के चेहरों पर ताज्जुब के आसार देखकर फरमाया, मुझे नमाज के दौरान में याद आया कि हमारे घर में कुछ सोना रखा हुआ है, और मुझे एक दिन या एक रात के लिए भी अपने घर में सोना रखना पसंद नहीं, लिहाजा मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। बुखारी की रिवायत 851। अब आप देखिए कि इस पे आप फतवे ले लें कि हाय फिर घर में सोना नहीं, हमारे तो घर में है, तो अल्लाह के नबी का जो मेयार था, अल्लाह करे कि हम उसको मुख्तलिफ तरीके से रखें। तो मुराद ये है कि आप ऐसी कोई चीज़ घर में रखना पसंद नहीं करते थे कि जो कि सदके में दी जा सके। तो क्या पता चला कि कभी कभी आप नमाज के फौरन बाद भी उठ के निकल जाते थे। चलिए एक और सवाल, नमाज में रोना, क्या नमाज में रो सकते हैं? तो अब्दुल्ला बिन शखीर रजी अल्लाह खान को फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, नमाज में रोने की वजह से आपके सीने से चक्की के चलने की सी आवाज़ आ रही थी। कभी चक्की चलती आपने देखी हो अगर तो इमेजिन करिए, और नहीं की तो घर में मशीनें ही चलती हैं, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह, उसको जहन में लें। और ये अबू दाऊद की रिवायत है 904, और इसी तरह सुनन नसाई की 1215, इब्ने हबान की किताब है अल मवारिद, उसमें हदीस 522 है। ज़रा सा सोचिए ऐसी आवाज़ पता है किसकी होती है जिसको रोना आ रहा है और वो रोना रोक रहा है। एक तो होता है ना बंदा बहुत खुल के रो लेता है, आवाज़ आ जाती है, नहीं एक होता है जैसे हिचकियाँ ऐसी आवाज़, एक हल्की सी आवाज़ जैसे बैकग्राउंड में आती है ना, हम भी कभी रोए। क्या पता चला कि मस्नूई नहीं, लेकिन हकीकी तौर पे अगर वाकई अल्लाह के खौफ से, जहन्नुम के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में या जन्नत की तलब में रोना आ जाए तो रो ले। बस लोग कहते हैं अच्छा अपने गम याद करके रोएं, तो जो दिल को लगा होगा वही होगा ना। अपने गमों पे रोने की बजाय आखिरत के गम पे रोइए। या कभी आप बेबस हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपकी नाकदरी की, तो भी रो लीजिए, लेकिन शिकवे रब से, इन नमाशकू बसी व हुस्नी अल्लाह। और अल्लाह हमें रोने वाली नमाजें पढ़ने वाला बनाए तन्हाई में। अकेले में रोना पसंदीदा है, दूसरों में रोना ऐब है। लोग क्या करेंगे आपके रोने से, खामखा बाद में आपको खुद भी शर्मिंदगी होगी। कभी जज्बाती होकर इंसान रो भी पड़े ना, इवन दुआ में, तो बाद में बुरा लगता है कि क्यों मैं रोया। तो अल्लाह के नबी की ये खशियत दिखाना मकसूद है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक काफ़ी सारे मसाइल हल हुए। अब एक ही मसला जो पीछे कह लीजिए कि इनडायरेक्टली आया था नमाज के तरीके में, यहाँ अब इसको डायरेक्ट एक टॉपिक के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारे उर्दू बोलने वाले कल्चर में इस मसले के बारे में लोगों के जहनों में काफ़ी इबहाम है, शक हैं, शुबे हैं। और दूसरी वजह भी है कि इसकी वजह से मस्जिदें अलग बटी हुई हैं। तीसरी वजह के लोग करीब की मस्जिद छोड़कर दूर जाते हैं क्योंकि उधर हम अपने तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आइए देखते हैं ज़रा रफ़ुल यदैन को सुन्नत की रोशनी में। ठीक है, कुरान पाक में तो ऐसी बातें कोई भी नहीं है। कुछ लोग ज़बरदस्ती मिलाने के लिए कुफ्फू अईदियाकुम पे कहते, देखा अल्लाह कह रहे हैं हाथ ना उठाओ, सूरह निसा की आयत है। हालांकि वहां तो जंग की बात हो रही थी, जब मक्का में जुल्म हो रहा था और लोग तशद्दुद करते थे, सहाबा किराम पूछते थे अल्लाह के नबी बदला लें इनसे, तो कहा जाता था कुफ्फू अईदियाकुम, अभी हाथ रोको, अभी तैयारी नहीं है, अभी इस्लाम पहले ही कमज़ोर है, थोड़े से लोग हैं, अभी ऐसी जंगें नहीं चलती। इसलिए 13 साल मक्का में कोई जंग ही नहीं हुई, वो टेक्स्ट आयत का। लेकिन कुछ लोग उसको रफुल जदैन ना करने के दलाइल में पेश करते हैं, ये एक बड़ी जुरत की बात है। कुरान के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस्म की तफसीर है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए। तो आइए देखते हैं कि रफुल जदैन क्या होता है और कैसे। शुरू में नमाज जब करते हैं शुरू, तो तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल जदैन होगा, फिर रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद, 2 रकतें पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए भी। ये नोट कीजिए, पहला तो सब करते हैं तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर, हर मसलक हर जमात वाले अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई इनकार नहीं करता। सिर्फ 2 मौके हैं, रुकू में जाते वक्त और उठते वक्त, बस इस पे मसला है। देखिए जो कॉमन ग्राउंड्स होती है ना, उसी पे रह के इंसान अगर दीन को ले ले तो ज्यादा बेहतर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह पहला तो सभी करते हैं ना, पर देखिए ये सुन्नत है। बाज लोग इसको अकीदा बना लेते हैं, आई डोंट नो वाई, ना उनको फिक का पता ना अकीदे का पता, इबादत और अकायद का फर्क भी नहीं पता। याद रखिए, ये झगड़ने वाली बातें नहीं, ये मुसलमानों के कटने वाली बातें नहीं। बात लोग दूसरे की सच्चाई, उसका इख़लास सिर्फ इन चीज़ों पे परखते हैं। अच्छा, वो हाथ उठाता है तो भी ठीक है, नहीं उठाता तो गलत है। और वो गलत है इसलिए कि वो उठाता है, या वो गलत है इसलिए कि वो नहीं उठाता। डोंट बी जजमेंटल। सुन्नत है, मसला बता दिया, अल्लाह के नबी का अमल देख लिया, उसके बाद हर बंदे को उसके अपने ज़मीर की अदालत में झांकने पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो तीन मौक़ों पे हाथों का इस तरह उठाना कि कंधों तक चले जाएं, और कल जैसे हमने पढ़ा था, कभी कभी कानों तक भी ले जाते थे। ठीक है, और अल्लाह अकबर साथ कहता है इंसान, एक रकत में तीन जगह पे है, पहली रकत शुरू पे, रुकू में जाते वक्त, और रुकू से उठते वक्त। पिछले सेशन में इस पर डिटेल से बात है। ठीक है, रुकू से उठते वक्त कहता बंदा समय अल्लाह लिमन हमीद है, लेकिन हाथ उठते हैं। फिर जब सजदे में जाते हैं उस वक्त आप अल्लाह अकबर कहते हैं। ये जो है ना, दो रकतों को पढ़कर तीसरी रकत के खड़े होते वक्त भी रफुल जैन करना, ये तो बिल्कुल मतरूक सुन्नत है हमारे कल्चर में। एक जुमला लिख लें, आपको ये मसला समझ आ जाएगा। हम जब शुरू में नियत करते हैं ना, जैसे तकबीर तहरीमा, ये दो रकतों की होती है। असल नमाज दो दो करके है। जब हम चार या तीन इकट्ठी पढ़ते हैं, जैसे मगरिब में और असर में, ईशा में चार रकतें, या फिर तीन मगरिब की, तो ये दो पढ़ने के बाद जब हम तशहुद में जाते हैं ना, दुरूद शरीफ तक पढ़ लिया, फिर खड़े होके, तो वहां दोबारा अल्लाह अकबर के लिए हाथ खड़े करने होते हैं। ये चीज हमारे कल्चर में नहीं। अब आप कहेंगे आपने ये सब बात कही तो दलाइल, तो आइए जरा दलाइल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस सही है, आप किसी आलिम को भी दिखा लीजिए, ये सारी सही दर्जे की रिवायात है। ठीक है, पहली दलील है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, सल्लई तो खल्फ अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फकान यरफ यदई ही इजफ्तहसलाता व इजा रका व इजा रफा रासहु मिन रुकूई वकाल अबू बकर सल्लई तो खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान यरफ यदई ही इजफ्तहसलाता वैजा रका वैजा रफा रसहु मिनर रुकुई। कहते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, वो नमाज के शुरू में एक चीज, रुकू से पहले, और जब रुकू से सर उठाते तब अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे, और मेरे नाना यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, तो आपने भी नमाज के शुरू में रुकू से पहले और रुकू से सर उठाने के बाद इसी तरह रफुल जदैन किया। यानी इस हदीस से पता चला कि अल्लाह के नबी भी और अबू बकर सिद्दीक भी इसी तरह से नमाज पढ़ते थे। रिवायत है जी, सुनन अल कुबरा बहकी जिल 2 पेज 73 है, और सही रिवायत है। अब आप देखिए इसमें इतराज क्या है, करते थे तो हम भी कर लेंगे, ठीक है ना, कोई इसमें मामला तो नहीं, और हदीस आपके सामने है। फिर उसके बाद किसका मुकाम है अबू बकर के बाद? उमर फारूक का। तो आइए जरा उनका भी अमल देख लेते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने एक मरतबा लोगों को नमाज का तरीका बताने का इरादा किया, तो किबला रुख खड़े होकर, यानी किबला रुख होकर खड़े हो गए, और दोनों हाथ कंधों तक उठाए, फिर अल्लाह अकबर कहा, फिर रुकू किया, और इसी तरह हाथों को बुलंद किया, रुकू से सर उठाकर भी रफुल यदैन किया। इसकी भी दलील ले लेते हैं, क्योंकि असल चीज तो दलील है, वरना तो मैं क्या कहूँ और आप क्या कहें, ये तो कीलो काल है जी। अल इखलाकियातु बहकी की किताब है, और अगर आप देखें तो सही सनद है, और 415 जिल्द 1 में और 416 पेज पे। यानी ये रिवायत आपको मुख्तलिफ हवालों से मिलेगी कि उमर फारूक को भी किसी ने इसी तरह से नमाज पढ़ते देखा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उनके बाद उनका मुकाम है, उस्मान का भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले हजरत अली की मिसाल दी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में, रुकू में जाने से पहले, रुकू से सर उठाने के बाद, और दो रकतें पढ़कर खड़े होते हुए रफुल यदैन करते थे। जी, ये अबू दाऊद की रिवायत है 744, और तिरमिजी ने भी इसको सही कहा है। चलिए, ये भी मामला हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा खुद भी नमाज शुरू करते वक्त रुकू से पहले, रुकू के बाद, और दो रकतें पढ़कर खड़े होते हुए रफुल यदैन करते थे, और फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करते थे। ये सही बुखारी की रिवायत है 739। अब ये तो हो गए नबी सल्लम सहाबा और अब्दुल्ला बिन उमर भी सहाबी हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा वक्त और आगे गुजरता है। इमाम बुखारी के उस्ताद, बहुत मारूफ उस्ताद है अली बिन मदीनी रहमहुल्ला, वो फरमाते हैं कि हदीस इब्ने उमर की बिना पर मुसलमानों पर रफुल यदैन करना ज़रूरी है। देखिए इमाम बुखारी नहीं, अब उनके उस्ताद की बात आई है, और ये उनकी बात अल तलखीसुल खबीर जिल्द एक है 218 में, जो उनकी नया एडिशन था उसमें ये मौजूद है, और इसी में फिर बुखारी की तरफ निस्बत भी है। यानी आप जब इन हदीसों को पूरे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इंशाल्लाह इनकी सेहत का भी पता चलता है। एक और दलील लीजिए, मालिक बिन हुरैरस रदी अल्लाहु अन्हु शुरू नमाज में रफुल यदैन करते, फिर जब रुकू करते तो रफुल यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते, और फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। ये बुखारी की रिवायत है 737 और मुस्लिम 391 रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक और रेफरेंस ले लेते हैं, वाइल बिन हजर। और जो लोग इल्मी दुनिया में, वो इन नामों से बड़ी अच्छी तरह मुतारिफ हैं, ये अपने दौर की बहुत बड़ी बड़ी इल्मी हस्तियां थीं, दलील के मैदान में इनका बहुत ही जोर था। तो ये कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, फिर अपने हाथ कपड़े में ढांक लेते, फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर रखते, जब रुकू करने लगते तो कपड़ों से हाथ बाहर निकालते, अल्लाह अकबर कहते और रफुल यदैन करते, जब रुकू से उठते तो समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और रफुल यदैन करते थे। सुभान अल्लाह। ये है जी सही मुस्लिम की रिवायत 401 नंबर की। तो गोया के अल्लाह के नबी का ये अमल देखा कि किस तरीके से आप इख्तिमाम के साथ, यानी अगर चादर में हाथ होते तो भी हाथ खोलकर ये काम करते थे। सैयदना वाइल बिन हजर रजी अल्लाह अन्हु 9 और 10 हिजरी में 2 मरतबा अल्लाह के नबी के पास आए। अब देखिए 9 और 10 हिजरी कौन सा है? अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का आखिरी दौर, ठीक है, कुछ अरसा पहले ही वसाल से। साबित हुआ कि नबी सल्लम 10 हिजरी तक रफुल यदैन करते थे, 11 हिजरी में आपने वफात पाई, तो गोया के आखिरी उम्र तक रफुल यदैन करना साबित है। ये जुमला क्यों बोला गया? इसलिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं पहले आप करते थे फिर छोड़ दिया। तब देखिए ये वाइल बिन हजर तो बिल्कुल आखिरी दौर के सहाबा में से हैं, तो उन्होंने जब ये अमल करते आपको देख लिया तो, और ज़बरदस्ती क्यों हम इसको निगेट करें, मुझे ये समझ नहीं आती कभी कभी बात। पूरी नमाज आप मान रहे हैं, इस पे एतराज़ क्यों है? तासुबात से और सिर्फ अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ बांधने से अलग कर लीजिए, आपका दिल आपको गवाही देगा, और ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। जो भी इसको दीन समझ के कर रहा है या छोड़ रहा है, उसके मामले को अल्लाह पे डाल दीजिए। आप अपने ताल्लुकात ना खराब करें दूसरे मुसलमानों से। बस लोग सिर्फ इस पे, खुशू है कि नहीं कोई पता नहीं, पता नहीं अल्लाह रहम करे हलाल के लुकमे हैं पेट में के हराम के नहीं पता, दिल कीने से भरे हैं कि नहीं पड़े ये नहीं पता। रफुल जदैन को कबूलियत नमाज और ना कबूलियत नमाज का मेयार बनाते हैं। देखिए हदीस क्या कि मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए हमेशा दुआ किया करें, अल्लाह मुझे दीन की पूरी समझ दे, पूरी नमाज अल्लाह के नबी जैसी हो जाए, क्योंकि सल्लु कमाराई तुमोनी उसल्ली। फिर इसी तरह अबू हुमैयत सादी कहते हैं, सहाबे कराम के एक मजमे में इन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते, जब रुकू में जाते, जब रुकू से सर उठाते, और जब 2 रकतें पढ़कर खड़े होते तो रफुल यदैन करते, तमाम सहाबा ने कहा तुम सच कहते हो, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ते थे। ये अबू दाऊद की रिवायत है 730 और तिरमिजी 304 और इब्ने हब्बान 491, और इमाम तिरमिजी भी इसको सही कहते हैं। जब इतने लोग एक चीज़ पे जमा हैं तो हम उसको ज़बरदस्ती क्यों पीछे करें? इसी तरह इब्ने खुजैमा इस रिवायत को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन यहया अज़ोहली रहमहुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि जो शख्स हदीस अबू हुमैयद रजी अल्लाह खान को सुनने के बावजूद रुकू में जाते और इससे सर उठाते रफुल यदैन नहीं करता तो इसकी नमाज नाकिस है। जी ये रिवायत का नंबर लीजिए, पहले इब्ने खुजैमा की सही रिवायत है 589। अब यहाँ क्यों कहा गया कि नाकिस है? यहाँ एक जुमला बड़े गौर से सुनिएगा और उसको बाद में समझिएगा। رفع الیدین اپنی جگہ، یہاں جانتے بوجھتے سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے نماز ناقص ہوگی، بات سمجھ رہے؟ یعنی کوئی عقیدہ بنا کر، اس کو تخیل میں لے کر نبی کی ایک سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، یہ جرم ہے. رفع الیدین تو اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی. جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا اور تکبیر کہی، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو. جی یہ روایت ہے دارقطنی الصلاة جلد 1 292 اور حدیث نمبر 16 ہے، اور یہ روایت صحیح ہے. اب آپ دیکھیے یہ کافی سارے دلائل ہم نے پڑھ لیے نا، ایک اور پڑھ لیجئے. جابر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے کرتے تھے. یہ روایت ہے جی ابن ماجہ کی روایت 868. چلیے کافی ساری روایت ہم نے پڑھ لی. ہوتا کیا ہے، نوٹ کیجئے گا، بعض دفعہ امام جہری نمازوں میں، یعنی وہ جس میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے، کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں. اس صورت میں امام اور مقتدی رکوع سے پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس وقت قیام سے سجدہ میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی ایسی رکعت پڑھائے جس میں آخر میں سجدہ ہے، وسجد واقترب، سجدہ کر اور قرب حاصل کر، اس کے آگے سجدہ ہے. کئی دفعہ یہ صورت پڑھی جاتی، جو ہی یہ صورت پوری ہوگی نا تو امام صاحب سجدے میں جائیں گے. یہ سجدہ کون سا ہوگا؟ سجدہ تلاوت. اب یہاں جاتے وقت وہ رفع الیدین نہیں کریں گے، بس اتنا فرق ہے. تو یہاں کافی سارے دلائل مل گئے. اب ایک سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا عمومی طور پہ، کہ جب اتنے دلائل ہیں تو پھر کچھ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، کرتے نہیں، کیونکہ ان حدیثوں کو جھٹلا تو کوئی بھی نہیں سکتا نا، تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آئیے ذرا ان کے بھی دلائل دیکھ لیتے ہیں. یعنی جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے نا، تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں. یعنی ہر ایک کے پاس حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھیے. الحمدللہ مسلمان اس گئے گزرے دور میں بھی دین کے نام پہ حدیث کی جگہ کوئی اور چیز نہیں پیش کرتے، ہوتی وہ حدیث ہی ہے. اس لیے نیت کسی کی بری نہیں، مت کہیے کہ نیت بری ہے لوگوں کی، لیکن علم میں کمی بیشی کی تھوڑی سی بات ہے، دلائل کو دیکھنے کی بات ہے، راجح اور مرجوح کی بات ہے. ایک کال زیادہ سٹرونگ ہے، دوسرا کم ہے. ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بات صحیح ہے تو دوسری یقیناً غلط ہو. ایک زیادہ صحیح ہے، ایک کم صحیح ہے، آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے. تو وہ روایت کون سی ہیں؟ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ روایات دوسرے اینگل سے ہے، آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں. جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. یعنی رفع الیدین کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا سرکش گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی جاتی ہے. نماز میں سکون اختیار کرو. اب یہ حدیث آپ کو بہت ساری نماز کی کتابوں میں ملے گی، اور دیکھیں روایت ہے مسلم کی اور 430 ہے. آپ کو مجھے کیا پتا کہ یہ کیا ہے، لیکن ذرا سا اس پہ غور کریں، ہاتھ اٹھانے کس وقت؟ صحابہ کرام کو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا جا رہا ہے تو کس وقت؟ اس میں کوئی رکوع کا وقت ہے، رکوع سے اٹھنے کی بات ہے، یا تیسری رکعت میں اٹھنے کی؟ نہیں. تو اس حدیث سے کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ رفع الیدین کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے منع کیے تو کس وقت اٹھانے سے منع کیا ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو دوسری حدیث دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ایک بات آج ہی لکھ لیجئے کہ ایک حدیث سے پورا مسئلہ نہیں واضح ہوتا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے، لوگ ایک حدیث سے دوسری بات کو پیچھے کر دیتے ہیں. اب دو روایات اور سنیے. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے، اس کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے. جب یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم قعدہ، قعدہ وہی جو کہ تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے نیچے، ایک قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہو. ये रिवायत मुस्लिम में है 431, ये भी हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे उससे जरा से क्लियर हुआ ना कि उधर सिर्फ हाथों के हिलने की बात थी, यहाँ पता चल रहा है कि सलाम फेरते वक्त करते थे। अगली हदीस लीजिए, फिर इस पे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। जाबिर बिन समूरा का बयान है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के खात्मे पर अस्सलामु अलैकुम कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये देखकर आपने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपने हाथों से इस तरह इशारा करते हो गोया वो शरीर घोड़ों की दुमे है। तुम नमाज से सलाम फेरते वक्त सिर्फ अपने साथी की तरफ मुंह मोड़ो और हाथ से इशारा ना करो। ये भी सही रिवायत है और मुस्लिम की रिवायत है 120 और इसी तरह 431। चलिए अब इन तीनों बातों को जमा करते हैं। अलामा नववी कौन है ये? सही बुखारी की शरह लिखी इन्होंने। अल मजमू में फरमाते हैं कि जाबिर बिन समरा की इस रिवायत से रुकू में जाते और उठते वक्त रफुल यदैन ना करने की दलील लेना अजीब बात और सुन्नत से लाइल्मी की कभी हर बदतरीन किस्म है, क्योंकि यह हदीस रुकू में जाते और उठते वक्त के रफुल यदैन के बारे में नहीं बल्कि तशहुद में सलाम के वक्त दोनों जानिब हाथ से इशारा करने की ममानियत के बारे में। मुहद्दिसीन और जिन्हें मुहद्दिसीन के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक है इनके माबैन इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं। इसके बाद इमाम नवी इमाम बुखारी रहमहुल्ला का कौल नकल करते हैं कि इस हदीस से बाज़ कम इल्म लोगों का दलील पकड़ना सही नहीं, क्योंकि ये सलाम के वक्त हाथ उठाने के बारे में है और जो आलिम है वो इस तरह की दलील नहीं पकड़ता, क्योंकि ये मारूफ और मशहूर बात है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। अगर ये बात सही होती तो इब्तदाए नमाज और नमाज ईद का रफुल यदैन भी मना हो जाता, यानी फिर जो पहली ये तकबीर तहरीमा पे हाथ उठते हैं वो भी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि जनरल बात की ना आपने, और ईद की नमाज में भी जो तकबीरें होती हैं उसमें रफुल यदैन है उसको भी रोक दिया जाता। मगर इसमें खास रफुल यदैन को बयान नहीं किया गया। इमाम बुखारी फरमाते हैं, बस इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वो बात कह रहे हैं जो आपने नहीं कही, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलयख्ज़र अल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। इन लोगों को जो इन नबी यानी जो नबी सल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं इस बात से डरना चाहिए कि इन्हें दुनिया में कोई फितना या आजमाइश या आखरत में दर्दनाक अजाब पहुंचे। ये सूरत नूर की आयत नंबर 63 है, यानी जानते बूझते सही हदीस को छुटला देना ये बड़ी जुरत की बात है। ठीक है, इतनी बात काफी है, समझ आ गई हमें कि यह हदीस है, सही हदीस है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मौका महल से हटी हुई बात है। इसमें ना तो रुकू से पहले की बात है ना बाद की बात है, जनरल बात है हाथों उठाओ। और आपको भी शायद हैरत हुई होगी कि सहाबा पहले सलाम क्यों फेरते थे और हाथ फेरते थे, ऐसे ही था। आपको पता है कि नमाज जो आज के वक्त हमारे पास है ये कई तदरीजी चीज़ों में से गुजर के यहाँ तक आई है। अब तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, असल में लोग पहले नमाज के दौरान बातें भी कर लेते थे, जैसे आज भी तवाफ के दौरान अगर ज़रूरत के तहत बात करनी पड़े तो बात की जाती है, कर सकते हैं, लेकिन नमाज में नहीं कर सकते। हालांकि तवाफ में भी बंदा एक किस्म की नमाज की ही कैफियत में होता है ना, बिल्कुल इसी तरह पहले लोग नमाज में बात करते थे और जब सलाम फेरते थे तो एक दूसरे से शेक हैंड भी करते थे, लेकिन जब वकूमु लिल्लाह ही कानितीन की बात आई तो रोक दिया गया। और एक सहाबी का पूरा वाकया आप इस आयत की तफसीर सुन लीजिए जाकर, सूरह बकरा की आयत है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको अपने थोड़े इल्म के साथ इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि जो मैं साबित करना चाहूँ वो साबित करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। और आपको मुझे तो किसी से कुछ नहीं बैर, हम तो भाई किसी भी मसलक किसी भी गिरोह को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो हदीस के मुताबिक बात करना चाहते हैं। और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा सही बात करने की तौफीक दे जो कुरान और सुन्नत से हो, ना हम झगड़ने वालों में से हों और ना झगड़ाने वालों से। अब ये तीन हदीसें जो इकट्ठी पड़ी इसके बाद अब एक और दलील भी वो लोग देते हैं जो कि रफुल यदैन नहीं करते, तो उनकी भी दूसरी हदीस भी सुन लीजिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत बयान की जाती है, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना बताऊं? उन्होंने नमाज पढ़ी और हाथ ना उठाए मगर पहली मर्तबा। अब ये रिवायत का पहले तो रेफरेंस ले लीजिए, ये ज़ईफ़ रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है 748 और तिरमिजी की रिवायत है 257। क्यों ज़यीफ़ है? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा तो आप देखिए, चेन जिसको आप सनद कहते हैं ना, वो बड़ी अहम है। आप कोई ऐसी बात पेश करें कि मैंने उससे सुना, वो उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, लेकिन उनमें से दो लोग मिले ही नहीं कभी आपस में, और उस वक्त फोन भी नहीं थे, तो कैसे सुना? बस हदीस ज़यीफ़ होगी। ठीक है, तो इसकी सनद में सुफियान सॉरी की तदलीस की वजह से ज़यीफ़ है। अब तदलीस क्या है ये इस वक्त छोड़ दें आप, बस यकीन कर लीजिए अगर दिल माने कि इस हदीस की सनद में ज़ोफ़ है। ठीक है, हदीस तो पेश की जाती है लेकिन हदीस में ज़ोफ़ है। ठीक है, यानी अनऑथेंटिक है, ये कह लीजिए ज़ोफ़ को। और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्ला इस हदीस को जब बयान करते तो फरमाते, लैसा हुआ बि सहीहिन अला हाजल लफ्जी, यह हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है। यह अबू दाऊद की रिवायत है, आप पढ़ लीजिए 748 में। इमाम तिरमिजी इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं? देखिए ना, ये तो बड़े बड़े इमाम गुजर चुके हैं ना, ये तो ये सारी चार फिक्हें जो इस वक्त बहुत मारूफ है उनसे पहले की शख्सियात थी ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सहासित्ता में, जिन्होंने वो छः बड़ी किताबें लिखी हदीस की, जिसके अंदर से आज सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल अखज़ करते हैं, तो ये लोग अपनी राय दे रहे हैं तो वो तो सबसे ऑथेंटिक राय होगी ना। तो इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्ला का ये कॉल नकल किया कि लम यसबुत हदीस उब्ने मसूदिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैही इल्ला फी अव्वली मर्रतिन। क्या इसका मतलब है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के तर्के रफुल यदैन की हदीस साबित नहीं है। ये बात आप कहाँ से जाके ले सकते हैं? इस कॉल की सनद अब्दुल्ला बिन मुबारक तक सही है। बहरहाल, हमारा इस सारी बात के पढ़ने के बाद खुलासा क्या है कि दा इला यूरिबिक मा ला यूरिबिक, शक वाली चीज़ को एक साइड पे कर दें और जिसमें शक नहीं उसको ले लें। इस रिवायत में सुफियान सॉरी मुदल्लस हैं और अन से रिवायत करते हैं। मुदल्लिस रावी की अन वाली रिवायत तफर्रुद की सूरत में ज़यीफ़ होती है। मशहूर मुहद्दिस शेख अल मुअल्लमी अल यमानी रहमहुल्ला ने अपनी किताब अल तनकील में इस रिवायत को सुफियान सॉरी की तदलीस की वजह से मालूल यानी ज़यीफ़ करार दिया। कितनों को यह जुमला समझ आया? अल्लाह माफ़ करे, हमारा इल्म के साथ ताल्लुक़ नहीं है, हमें इनमें से आधी बातें भी नहीं समझ आईं। और किताब में पेज 25 पे जिल्द 2 में देख सकते हैं आप, हमें तो किताब का नाम नहीं पढ़ना आता। हमें से किसी के घर में है तनकील नाम की किताब? हमें मालूल का मतलब पता है? हमें मुदल्लिस का मतलब पता है? तफरुद का पता है? ज़यीफ़ का पता है, क्योंकि उर्दू में बोलते हैं बूढ़ी ज़यीफ़ औरत। तो माजरत के साथ, ये इल्म वालों को बातें अच्छी लगती हैं। लाइल्म लोग सिर्फ सुनी सुनाई बात, एक की तकलीद में दूसरा दूसरे में, ये सुनी सुनाई बातों पे तो आज तो वेस्ट पूरे का पूरा दलील मांगता है। खाने का एक पैकेट आप लेते हैं, उस पे लिखा होता है इसमें क्या क्या है, कोई एलर्जी वाली चीज़ तो नहीं है? लिखा ना हो पैकेट में और चीज़ आ जाए अंदर, आप सू कर सकते हैं उस कंपनी को। एक ब्रेड लेते हैं उसके अंदर 10 चीज़ें लिखी है, दूध का डब्बा लेते हैं, जूस लेते हैं उसमें लिखा है कितने परसेंट पानी कितने नहीं, तो दीन ऐसे ही ले जाएंगे? हमने लिया माजरत माफ़ी के साथ, दीन को हमने ऐसे घर की एक मिराज समझा। और आम औरतें भी बैठ के बातें करती जिनको अलिफ लिल्ला नहीं पता। आप ये मसला किसी से भी बयान करके देखिए, फिर देखिए आपको वो क्या कहेंगे, पता नहीं कौन है ये, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ा रहे हैं भाई, इल्म की दुनिया है, नहीं पढ़नी तो ना पढ़े, नहीं माननी तो ना माने, लेकिन किसी के कहने पे हदीस क्यों बदली जाए? क्यों छुपाई जाए सही हदीस? क्यों एक कमज़ोर हदीस है उसका नाम बताया जाए कमज़ोरी है? तो ये आपके मेरे समझ में आने वाली बातें नहीं है। दीन वालों को बहुत अच्छी तरह ये बातें समझ आती हैं, सारी बातें समझ के भी बाद में लोग आखिर में अगर ये कह दें बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद हूँ रहमहुल्ला, अल्लाह उन पर अपनी करोड़ों रहमतें करे, तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप हनफी बन सकते हैं, ठीक है, इमाम अबू हनीफा तो खुद को नहीं कहते थे ऐसे। चारों आइमे कराम की अहादीस आप जाएंगे, अगर आपके दिल में ज़रा सा भी शक हुआ ना किसी बात पे, तो इसके बाद आपको वो चैप्टर पढ़ा देती हैं और सुनवा देते हैं। अगर आप कहीं किसी ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं तो आपको तबाए सुन्ना का वो टॉपिक कि तबाए सुन्ना आइमे कराम की नज़र में, वेबसाइट पे भी आप खुद जाकर देख लीजिए, तफहीमुस सुन्ना की दूसरी बुक है, खोलिए और जाके पढ़ लीजिए। आयमे कराम का अपना मौकफ क्या था, लेकिन आज उनका नाम लेकर बगैर इल्म के बात करने वाले आज इस बात को कैसे उम्मत के बंटवारों की वजह बना बैठते हैं। अकीदे पे कोई बात नहीं, हलाल हराम पे कोई बात नहीं, कबीरा गुनाहों पे कोई बात नहीं, जहां बात आई इबादत के नाम पे, जरा 19 से 20 आपकी नमाज किसी से फर्क है? अल्लाह की बना, अल्लाह की बना जी। आप में से किसी ने लिखा है कि क्या इमाम काबा रफुल यदैन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और माजरत के साथ अगर वो नहीं भी करते तो वो करते हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, आप तस्वीरों में देख लीजिए, वीडियोस में देख। लेकिन अगर वो भी ना करें तो हदीस की अपनी जगह, हदीस हमारे आपके लिए हुज्जत है, दैट्स इट। कोई उस्ताद, कोई मदरसा, कोई बड़े से बड़ा इमाम, सब काबिले इज्जत, सब की इज्जत कीजिए, सब की रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अपने लिए आप हमेशा ऑर्गेनिक चीज लीजिए। दीन को किसी की मिरास नहीं है, तो आज इसी वजह से हम बेइल्म रह गए। फलां इल्म ना ले, फलां से पहले ना ले, औरत तो बिल्कुल ही ना ले, और ये इल्म लेने से पहले 6 उलूम हासिल करें, और कुरान तो कोई पकड़े ना, ये सजा भुगत रहे हम औरतों को भी, खास तौर पे दीन से दूर करके, बच्चे चले गए दूर। नहीं, ये काम ना, ये तो चंद उलमा का काम है। कभी आपने सुनी ये बातें? उलमा करते हैं वरना नहीं। इसी वजह से देखिए, यहूद के ऊपर जब जवाल आया था ना, तो वजह उसकी एक थी कि तौरात छुपा दी। आम यहूदी के घर में तौरात का रखना जुर्म था, पढ़ के देखिए हिस्ट्री। जब मजहबी किताबें सिर्फ चंद लोगों के हाथ में रह जाती है ना, तो फिर उम्मत कह लीजिए कि स्टारवेशन का शिकार हो जाती है, कहत पड़ जाता है, फिर भूख से भी, जैसे लोग मरते हैं ना इस इल्मी भूख की वजह से भी नस्लें चली जाती हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो हम आज देख रहे हैं। मैं एक सवाल का जवाब दूं जो मुझसे किसी ने पूछा, कल बात हुई थी नियत की, तो मैं उसका जवाब पहले दूं क्योंकि वो नमाज में भी तरतीब में पहले ही, और जिन्होंने दिया वो इंशाल्लाह इस सेशन में इस जवाब को ले भी लेंगे, कि अकेले मैं उनको बताऊंगी तो बेहतर है कि सब के साथ ले लीजिए। इनका सवाल ये था कि इनके वालिद मोहतरम भी माशाल्लाह दीन को जानते थे, तो वो नमाज शुरू करने से पहले नियत करते थे, और जो उन्होंने मुझसे पूछी वो एक किस्म की पंजाबी की नियत थी। तो सवाल ये है कि नमाज से पहले हमारे असलाफ या माँ बाप, दादा दादी, इवन उस्तादों में कोई नियत करता था और जुबान से करता था, तो क्या वो ठीक नहीं करते थे, या अगर आज फिर हम क्या करें? तो यहाँ जवाब में पहली बात, पूरी नमाज अरबी में, ऐसे ही है ना, किसी ने कहा कि अगर अरबी में ना पढ़ूं तो किसी और में पढ़ूं तो क्या होगा, उन्होंने कहा सब कुछ हो जाएगा लेकिन नमाज नहीं होगी। आज भी इवन कोई न्यू मुस्लिम है ना जिसको अरबी नहीं आती, और वो बिल्कुल सीखना ही नहीं चाह रहा, और वो कहता है मैं इंग्लिश में ही नमाज पढ़ता रहूं, इंग्लिश में ही मैं नमाज पढ़ूं, तो नहीं होगी। हाँ, जब तक उसको नहीं आती, नमाज इन एक्शन के साथ पढ़ने के अंदर आप अपने आप को सीख रहे हैं, अंदर कुछ भी पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह ही पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आप इसको लॉन्ग रन पे नहीं चला सकते ना। तो नमाज अरबी में है, आप नियत कर रहे हैं पंजाबी में, कोई फारस में रहता है नहीं, ईरान में, तो फारसी में करेगा ना, और दूसरे मुल्क वाला कोई इंग्लिश में करेगा, तो मुझे बताइए कि वो नमाज फिर अरब वाली नमाज तो ना हुई ना। नमाज की वहदत देखिए, अरब का मुसलमान, अजम का मुसलमान, पाकिस्तान का, इंडिया का, स्पेन का, चाइना का मुसलमान, नमाज सब अरबी में पढ़ते हैं। ये कितनी बड़ी एक इस्लाम की खूबसूरती है। पहली बात, अगर वाकई हम जो कह रहे होते हैं वो अरबी लैंग्वेज में ही कहें तो बात भी एक बनने की है। और दूसरी बात क्या है कि अनियतु अमलुल कल्ब। फिर उनका सवाल ये भी था कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं सुन्नत पढ़ रही हूं कि नफिल, तो जवाब बिल्कुल वाज़े, आपको भूख लगती है किचन में जाते हैं, खड़े होकर किचन के दरवाजे में नियत करते हैं, नहीं आप क्यों गए, आपको ये भी पता है खुद से कि मैं पकाने जा रही हूँ खाना, या खाने जा रही हूँ, या फ्रिज से निकालती हूँ, दाल पकाऊंगी, आलू पका लूँ, सब्जी पका लूँ, गोश्त पका लूँ, हमें पता होता है। तो नियत दिल की इरादों का नाम है, जबान से जब बात की जाती है वो एक अमल बन जाता है, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है वैसे, मैं आपको ये भी बता दूँ, लेकिन तरीका यही है कि दिल में रखिए और काम शुरू किए। आपको पता होता है ये फजर की सुन्नतें पढ़ी, आप कहते हैं अभी शुरू वक्त हुआ है मैं सुन्नतें पढ़ लूं, किसी दिन देर से आंख खुली, आप कहते हो हो नमाज तो बहुत थोड़ा टाइम रहा, अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पहले फर्ज पढ़ लूं, अब आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, चलो इसको 10 पाउंड दे देती हूँ, को बोलता कहता है खड़ा होके पर्स खोल के, मैं जरा खोलती हूँ पर्स, निकालती हूँ पैसे, दूंगी इसको पैसे, नहीं करते ना। तो बात मुझे लगता है कि वाजे है, और अल्लाह ताला में हक बात को समझने की तौफीक दे। अभी भी किसी का शरह सदर नहीं है तो करते रहिए, कोई बात नहीं, आपको जिस दिन दिल खुल जाएगा आप छोड़ दीजिए, और बंदे और रब के बीच में आपका मेरा काम किसी को फोर्स करना नहीं है, ठीक है? तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।